शारदा के पिता को अभय के अनाथ होने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उसके बारे में जब बाकी की चीज पता चली तो तुम्हारे नाना जी इस चीज के साथ खिलाफ हो गए। उन्होंने साफ कह लिया कि वो एक ऐसे इंसान से शारदा की शादी नहीं करवा सकते हैं जिसका आगे कोई भविष्य ही नहीं हो। यहाँ तक कि अभय के पास अपना घर तक नहीं था। वो तो खुद शारदा से इसीलिए शादी करना चाहता था ताकि उसके घर में घर जमाई बनकर रह सके। उसे पता था कि शारदा अपने माता पिता की इकलौती बेटी है और कल को सब कुछ उसी का होना है, पर तुम्हारी माँ की अकल में ये बात नहीं आई थी और वो अभय के साथ भागने की साजिश कर रही थी। एक बार शादी हो जाती उसके बाद कोई क्या कर सकता था, यही सोचकर शारदा ने भागने का फैसला किया। पर उसके बारे में शारदा के पिता को पता चल गया। उन्होंने शारदा का घर से निकलना बंद कर दिया, पर शारदा अपनी जिद के आगे किसी रिश्ते का लिहाज नहीं कर रही थी। तुम्हारे नाना जी को उस दिन खुद पर बहुत गुस्सा आया था अरुणिमा। उन्होंने तो अपनी जान लेने की भी कोशिश की, ये सोचकर कि शायद उनकी परवरिश में ही कोई कमी रह गई थी। क्या उन्होंने गलत किया अपनी बेटी को समाज में आज़ादी दिलवाकर? क्या उन्हें भी वैसे ही शारदा को घर में बंद कर देना चाहिए था जैसे बाकी के लोग करते हैं और अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते हैं? उन्होंने तो अच्छा ही चाहा था ना। दौर जिस तरीके से आगे बढ़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि लड़का और लड़की दोनों का सक्षम रहना जरूरी है। उन्होंने कभी भी शारदा को अपने बेटे से कम नहीं समझा, लेकिन शारदा ने उनकी परवरिश का, उनकी दी हुई सीखों का गलत मतलब निकाला और बात इस हद तक आगे बढ़ गई कि शारदा तुम्हारे नाना जी की बेइज्जती समाज में करने से भी पीछे नहीं हटती थी। शारदा के पिता को एहसास हो गया था कि शायद अब बात हाथ से आगे निकलने वाली है, इसीलिए उन्होंने शारदा की शादी अपने ही समाज के एक लड़के से करवा दी। ओमकार मेहरा, तुम्हारे पिता, जो शारदा से 8 साल बड़े थे। शारदा ने कभी भी तुम्हारे पिता को पसंद नहीं किया था, वो तो तुम्हारे पिता से नफरत करती थी। पर क्योंकि तुम्हारे नाना जी ने शारदा को धमकी दी थी कि अगर उसने ओमकार से अपने रिश्ते को खराब किया तो वो अपनी प्रॉपर्टी किसी ट्रस्ट को दे देंगे, लेकिन शारदा के नाम नहीं करेंगे। इसी धमकी ने शारदा को ओमकार के साथ शादी का रिश्ता निभाने पर मजबूर कर दिया था। ओमकार एक बहुत ही स्वाभिमानी लड़का था, भले ही वो उम्र में बड़ा था, पर इसके अलावा एक और वजह थी जिससे शारदा ओमकार से नफरत करती थी। वो ये थी कि ओमकार पहले से शादीशुदा था। जैसे ही अरुणिमा ने ये सुना, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो हैरान होते हुए अपनी नानी की बात सुन रही थी। उसकी नानी आगे कहती है, हाँ अरुणिमा, ओमकार पहले से शादीशुदा था और जब शारदा की ओमकार से शादी हुई तब तुम 1.5 साल की ओमकार की गोद में थी। अपनी नानी की बात सुनकर अरुणिमा के आंसू बह तो रहे थे, लेकिन शायद उसकी आंखों में जो हैरानगी थी उससे और ज्यादा तेज हो गई थी। वो हताश होते हुए अपनी नानी से कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं नानी? मतलब क्या है आपका कहने का? आप जो कह रही हैं आपको पता भी है? आप कहना चाहती हैं कि मैं माँ की असली बेटी नहीं हूँ? अरुणिमा की नानी रोते हुए अपने आंसुओं को साफ करती है और धीरे से नामे सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं अरुणिमा, तुम शारदा की असली बेटी नहीं हो। अरुणिमा एक झटके से खाट से खड़ी हो जाती है और हैरान नजरों से अपनी नानी को देखते हुए कहती है, नहीं नानी, ऐसा नहीं हो सकता है, आप झूठ बोल रही हैं। वो मेरी माँ है, मैंने बचपन से उन्हें देखा है और अगर ये सच होता तो मुझे इस बारे में पता होता, कोई तो मुझे बताता ना। अरुणिमा की नानी की आंखों में भी आंसू थे और वो रोते हुए कहती है, कौन बताता? जिनको ये राज पता था वो सब तो चले गए, सिर्फ शारदा ही रह गई है। अरुणिमा को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। नानी ने धीरे से अरुणिमा का हाथ पकड़ा और उसे खाट पर दोबारा बिठाते हुए कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो अरुणिमा, देखो मैं उम्र के इस पड़ाव में हूँ जहाँ पर मेरा बुलावा कभी भी आ सकता है, पर ये राज जो मेरे दिल में दफन था इसे मैं तुम्हें बताकर जा रही हूँ। वरना मैंने तो सोच लिया था कि इस राज को अपने साथ ही लेकर चली जाऊंगी, लेकिन आज जब तुमने मुझे शारदा के अतीत के बारे में पूछा तो मुझे तुम्हें ये बात बतानी पड़ी और मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यही सच है। तुम शारदा की अपनी बेटी नहीं हो, तुम्हारी माँ तो तुम्हारे पैदा होते ही चल बसी थी। तुम्हारे पिता ओमकार ने दूसरी शादी की ही इसीलिए थी ताकि तुम्हारी परवरिश के लिए एक माँ मिल सके। तुम्हारे नाना जी की धमकी ने शारदा के दिलो दिमाग पर घर कर लिया था कि अगर उन्होंने ओमकार के साथ अपनी शादी को नहीं निभाया तो तुम्हारे नाना जी अपनी सारी जायदाद किसी अनाथ आश्रम को दान कर देंगे। बस यही सोचकर उन्होंने ओमकार के साथ जबरदस्ती के इस रिश्ते को अपनाना सही समझा, लेकिन उसके दिल में कहीं ना कहीं अभय अभी भी जिंदा था। ओमकार एक बहुत अच्छा और स्वाभिमानी आदमी था। उन्होंने तुम्हारे नाना जी के जायदाद में से कुछ भी लेने के लिए मना कर दिया था और वो तुम्हारी माँ को लेकर शहर चला गया ताकि वहाँ पर एक कंपनी में काम कर सके। उसका कहना ये था कि वो इतना तो कमा ही सकता है कि अपनी बीवी बच्चों को पाल सके। धीरे धीरे वक्त बीतता रहा और ओमकार, शारदा और तुम शहर में रहने लगी थी। शहर में तुम्हारा जो घर था वो काफी छोटा था और शारदा के सपने बहुत बड़े थे। वो वहाँ पर जिंदगी जी नहीं रही थी बल्कि जिंदगी कट रही थी, पर तुम्हारे लिए उसका रवैया कुछ ऐसा था कि तुम्हारा होना या ना होना उसके लिए मायने नहीं रखता था। मुझे अच्छी तरह से याद है, तुम 5 साल की थी और तुम्हारे पिता एक कंपनी में सुपरवाइजर की पोस्ट पर काम करते थे। क्योंकि शारदा की शादी बहुत छोटी में हो गई थी, इसीलिए अब वो काफी जवान दिखने लगी थी और पहले से ज्यादा खूबसूरत भी हो गई थी। होती भी क्यों नहीं, ओंकार के पैसे वो अपने श्रृंगार पर ही तो खर्च किया करती थी। बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि तुम्हारे कपड़े फटे हुए हैं या तुमने खाना नहीं खाया है। ओंकार धीरे धीरे तुम्हारी माँ की इन हरकतों से परेशान हो गया था। उसका कहना यह था कि भले ही वो सारे पैसे अपने ऊपर खर्च कर ले, पर तुम्हारी तो ठीक से देखभाल करें। तभी शारदा ने ये खबर दी कि वो माँ बनने वाली है। ओंकार बहुत खुश हुआ, उसकी जिंदगी में दूसरा बच्चा आने वाला था, पर शारदा के लिए ये बच्चा सिर्फ एक जरिया था। उसने ओंकार को बहला फुसला कर ये कहा कि इस वक्त वो 2 बच्चों की जिम्मेदारी अकेले नहीं उठा पाएगी। शारदा गाँव आने की जिद करने लगी ताकि डिलीवरी यहाँ करवा सके और तुम्हारी भी अच्छी तरह से परवरिश हो जाएगी।